तो नहायत थोड़े में दयानतदार निकला। अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने आकर कहा, है खुदावंद, तेरी अशर्फी से 5 अशर्फियां पैदा हुई। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, है खुदावंद, देख तेरी अशर्फी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा है उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुल्जिम ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि मैं सख्त आदमी हूं, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो नहीं बोया उसे काटता हूं। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के हाथ क्यों नहीं रखा कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशर्फी उससे ले लो और 10 अशर्फी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, उसके पास 10 अशर्फियां तो हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहां लाकर मेरे सामने कत्ल करो।
ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैतफगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को यह कहकर भेजा,
सामने के गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो, तो कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है।
बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा,
इस बच्चे को क्यों खोलते हो?
उन्होंने कहा,
खुदावंद को इसकी जरूरत है।
वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजिज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हमद करने लगी।
मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुला और आलम बाला पर जलाल।
भीड़ में से बाद फरीसियों ने उससे कहा,
अरे उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे।
उसने जवाब में कहा,
मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे।
जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा,
काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझमें हैं जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझमें किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को न पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई।
फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा,
लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया है।
और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फकी और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर ना निकाल सके कि ये किस तरह करें, क्योंकि सब लोग बड़े शौक से उसकी सुनते थे। लूका की इंजील बाब 20। उन दिनों में एक रोज ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था, तो सरदार काहिन और फकी बुजुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे,
हमें बता, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है?
उसने जवाब में उनसे कहा,
मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से?
उन्होंने आपस में सलाह की,
अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वह कहेगा तुमने क्यों उसका यकीन ना किया, और अगर कहें कि इंसान की तरफ से तो सब लोग हमको संसार करेंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी था।
बस उन्होंने जवाब दिया,
हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था।
यीशु ने उनसे कहा,
मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ।
फिर उसने लोगों से ये तमसील कहनी शुरू की,
एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वो ताकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दे, लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर ताकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मीरास हमारी हो जाए। बस उसको ताकिस्तान से बाहर निकालकर कत्ल किया। अब ताकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा, वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और ताकिस्तान औरों को दे देगा।
उन्होंने यह सुनकर कहा,
खुदा ना करे।
उसने उनकी तरफ देखकर कहा,
फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मैमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा।
उसी घड़ी फकीहों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हम पर कही, और वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे के रास्तबाज बनकर उसकी कोई बात पकड़ें ताकि उसको हाकिम के कब्जे और इख्तियार में दे दें। उन्होंने उससे ये सवाल किया,
आए उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है, हमें कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं?
उसने उनकी मक्कारी मालूम करके उनसे कहा,
एक दिनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और नाम है?
उन्होंने कहा,
कैसर का।
उसने उनसे कहा,
बस जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है खुदा को अदा करो।
वो लोगों के सामने उस कौल को पकड़ ना सके बल्कि उसके जवाब से ताजुब करके चुप हो रहे। फिर सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत है ही नहीं, उनमें से बाज ने उसके पास आकर ये सवाल किया,
अरे उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का बेहया हुआ भाई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। चुनांचे सात भाई थे, पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, फिर दूसरे ने उसे लिया और तीसरे ने भी, इस तरह सातों बे औलाद मर गए, आखिर को वो औरत भी मर गई। बस कयामत में वो औरत उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो सातों की बीवी बनी थी।
यीशु ने उनसे कहा,
इस जहान के फर्जंदों में तो ब्याह शादी होती है, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें और मुर्दों में से जी उठें, उनमें ब्याह शादी न होगी, क्योंकि वो फिर मरने के भी नहीं, इसलिए कि फरिश्तों के बराबर होंगे और कयामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। लेकिन इस बात को कि मुर्दे जी उठते हैं मूसा ने भी झाड़ी के जिक्र में जाहिर किया है, चुनाचे वो खुदावंद को अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहता है, लेकिन खुदा मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है, क्योंकि उसके नजदीक सब जिंदा हैं।
तब बाज़ फकीहों ने जवाब में उससे कहा,
अरे उस्ताद, तूने खूब फरमाया,
क्योंकि उनको उससे फिर कोई सवाल करने की जरूरत ना हुई। फिर उसने उनसे कहा,
मसीह को किस तरह दाऊद का बेटा कहते हैं? दाऊद तो जबूर में आप कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। बस दाऊद तो उसे खुदावंद कहता है, फिर वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा?
जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने शागिर्दों से कहा,
फकीहों से खबरदार रहना जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरने का शौक रखते हैं।